छंद नौ। ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, सोहते मध्य में हिरक युग या दो कौस्तुभ। टूटा वह तार ध्यान का स्थिर, मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल। बैठे थे वही कमल लोचन पर सजल नयन, व्याकुल व्याकुल कुछ चीर प्रफुल मुख निश्चेतन। प्रसंग, हनुमान जी ध्यान मग्न राम के समीप बैठे हुए थे तथा नेत्र बंद किए हुए राम के चरणों को ध्यान में देख रहे थे। राम देवी के ध्यान में इतने तल्लीन थे कि उनके चित्त की तदाकार परिणति हो गई और वे तद्रूप हो गए, अर्थात देवी के रूप में बदल गए। इसलिए राम के चरण हनुमान को देवी के चरणों के रूप में दिखाई देने लगे। संदेह भरी हुई दृष्टि से नेत्र खोलकर हनुमान ने देखा कि उनके सामने देवी नहीं अपितु राम बैठे हैं, किंतु उनकी आंखों में आंसू हैं। इन पंक्तियों में कवि ने इसी वृतांत का वर्णन किया है। व्याख्या, राम श्यामा ब्रैकेट देवी ब्रैकेट क्लोज के ध्यान में डूबे हुए थे। ध्यान की तल्लीनता में उनके चित्त की तदाकार परिणति हो गई, परिणामतः वे स्वयं को देवी रूप में अनुभव करने लगे। इधर हनुमान वहीं ध्यान मग्न बैठे हुए राम के चरणों का ध्यान कर रहे थे। अब राम के चरण देवी के चरण बन गए थे, अतः हनुमान को ध्यान में राम के स्थान पर जब देवी के चरण दिखाई दिए तो वे सोचने लगे कि अरे, ये चरण राम के न होकर देवी के शुभ चरण हैं, जिन पर गिरे हुए आंसू दो हीरों की तरह या दो कौस्तुभ मणियों की तरह चमक रहे थे। हनुमान के ध्यान की तल्लीनता भंग हो गई तथा उनके स्थिर एवं शांत मन में व्याकुलता भर गई। संदेह से भर कर उन्होंने अपने नेत्र खोले और जब दृष्टि ऊपर उठाई तो उन्हें अपने समक्ष वही कमल जैसे नेत्रों वाले राम बैठे दिखाई पड़े, किंतु उनके मुख पर व्याकुलता एवं चिंता के भाव थे तथा सदैव प्रफुल्लित रहने वाला वह मुख मुरझाया हुआ था और उनकी आंखों में आंसू की बूंदें झलक रही थीं। विशेष पॉइंट वन, प्रथम पंक्ति में अपहुति अलंकार है क्योंकि उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की गई है, इसी को अपहुन्नति अलंकार कहते हैं। पॉइंट टू, कमल लोचन में उपमा अलंकार। पॉइंट थ्री, चिर प्रफुल मुख निश्चेतन में विरोधाभास। पॉइंट फोर, व्याकुल व्याकुल में पुनरुक्त पर प्रकाश अलंकार है। पॉइंट फाइव, सोहते मध्य में हीरक युग या दो कौस्तुभ में संदेह अलंकार है। पॉइंट सिक्स, छायावादी भाषा एवं लाक्षणिक पदावली का प्रयोग हुआ है। छंद तेन, ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार, हो श्वासित पवन उनचास पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल, शत गुणाव्रत तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष, शत वायु वेग बल डूबा अतल में देश भाव, जल राशि विपुल मत मिला अनिल में महाराव, वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश पहुंचा, एकादश रुद्र शुभ्ध कर अटाहास। प्रसंग, श्यामा देवी रावण की सहायता कर रही थी। जब यह राम को पता चला तो उनकी आंखों से दो बूंद आंसू टपक पड़े। उन्हें लगा कि जब देव शक्तियां भी रावण की सहायता करेंगी तो उसे कैसे पराजित किया जा सकेगा। अपनी विवशता पर उनकी आंखों से दो बूंद आंसू टपक पड़े। हनुमान राम के चरण कमलों का अवलोकन कर रहे थे। अब राम के चरणों पर वे आंसू गिरे तो पहले तो हनुमान कुछ समझ नहीं पाए, किंतु जब उन्हें यथार्थ स्थिति का बोध हुआ और उन्होंने जाना कि राम रो रहे हैं तथा इन आंसुओं का मूल कारण शक्ति कोष्ठक रावण की सहायता करने वाली श्यामा कोष्ठक बंद हैं, तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। हनुमान के इस रौद्र रूप का वर्णन कवि ने प्रलय कालीन सागर के माध्यम से किया है, जो अत्यंत विकराल होकर सब कुछ नष्ट करने का को उद्यत हो जाता है। व्याख्या। हनुमान को जब यह पता चला कि ये तो प्रभु राम के आंसु हैं, तो अत्यंत विचलित हो उठे। मेरे होते हुए मेरे प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू हैं? धिक्कार है मेरे पौरुष को। सेवक के रहते हुए यदि स्वामी रो रहा है तो ऐसे सेवक को बारंबार धिक्कार है। वह सोचते हैं, यह सोचते ही हनुमान अत्यंत क्रोधित हो उठे और शक्ति की क्रीड़ा के अपार सागर हनुमान उद्वेलित हो उठे। उनकी दशा उस सागर के समान हो गई जो तूफान आने पर विचलित हो जाता है और समस्त मर्यादाओं को तोड़ देता है। जैसे सागर में तूफान आने पर तेज हवाएं चलने लगती हैं तथा ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं, उसी प्रकार हनुमान जी भी क्रुद्ध एवं विचलित हो गए। उनके पिता मरुत की ओर से 49 प्रकार के पवन उनकी सहायता हेतु भयंकर कोलाहल करते हुए चलने लगे, जैसे तूफानी हवाएं समुद्र के वक्ष पर से वाष्प को उड़ा देती हैं तथा उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। जल राशि ऊपर उठकर तरंगों के रूप में समुद्र की सतह पर ही टूट कर गिरती है। उसी प्रकार हनुमान के मन में अनेक विध्वंसकारी विचार उत्पन्न होने लगे। प्रलयंकारी सागर की भांति आज वे समस्त मर्यादाओं को तोड़ने के लिए उद्यत हो उठे। उनका वक्ष स्फीत हो गया, अर्थात वक्ष को फुलाकर उत्साह में भरकर वे कुछ ऐसा करने को उद्यत हो गए जिससे राम का दुख दूर हो सके। सैकड़ों वायु के वेग एवं बल से संयुक्त होकर हनुमान रूपी सागर सारी पृथ्वी को अपने में डुबो लेने के लिए सन्नद्ध हो गया। वायु के साथ जैसे लहरें टकराने पर भयानक शोर होता है, उसी प्रकार भयानक सिंहनाद करते हुए बजरंगी हनुमान जो 11वें रुद्र के अवतार हैं उस महाकाश में जा पहुँचे जहाँ शिव और शक्ति का निवास है। भाव यह है कि जब हनुमान ने यह जाना कि राम के आंसुओं का संबंध श्यामा अर्थात शक्ति से है, तो वे उस शक्ति से युद्ध करने के लिए उस आकाश में जा पहुँचे जहाँ शक्ति का निवास माना गया है। विशेष पॉइंट 1, हनुमान का यह क्रोध सात्विक क्रोध है जो अपने स्वामी के दुख के कारण उत्पन्न हुआ है। पॉइंट 2, हनुमान को एकादश रुद्र का अवतार माना गया है। पॉइंट 3, हनुमान के क्रोध का चित्रण प्रलयंकारी सागर के माध्यम से किया गया है। पॉइंट 4, प्रतीकात्मक शैली लाक्षणिक भाषा का प्रयोग हुआ है। पॉइंट 5, रौद्र रस का परिपाक इन पंक्तियों में है। पॉइंट 6, शक्ति खेल सागर में रूपक अलंकार है। पॉइंट 7, शतघुणाव्रत हनुमान के मन में सैकड़ों विध्वंसकारी विचार उत्पन्न हो रहे थे। पॉइंट 8, जैसे प्रलयंकारी सागर सारी मर्यादाओं को तोड़ देता है, वैसे ही हनुमान आज वह सब करने को तत्पर हो रहे थे जो सामान्यतः वह करना नहीं चाहते थे। पॉइंट 9, हनुमान की भक्ति भावना का परिचय मिलता है ऊपर लिखित पंक्तियों में। पॉइंट 10, छायावादी भाषा शैली संस्कृत निष्ठ पदावली का भी प्रयोग हुआ है। पॉइंट 11, भाषा का भावानुकूल प्रयोग राम की शक्ति पूजा में हुआ है। छंद 11, रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेजह प्रसार इस और शक्ति शिव की जो दस कंद पूजित उस और रुद्र वंदन जो रघुनंदन कूजित करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल लख महानाश शिव अचल हुए शनभर चंचल श्यामा के पदतल भार धरन हर मंद्र स्वर बोले संबरो देवी निज तेज नहीं वानर यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर अर्चना राम की मूर्ति मान अक्षय शरीर चिर ब्रह्मचर्यत ये एकादश रुद्र धन्य मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य लीला सहचर दिव्य भावधर इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार विद्या का ले आश्रय इस मन को दो प्रबोध झुक जाएगा कपि निश्चय होगा दूर रोध। प्रसंग, हनुमान को जब यह बोध हुआ कि मेरे प्रभु राम की आंखों में आंसू हैं तो वे प्रचंड क्रोध से भर कर विराट रूप धारण कर आकाश को निगल जाने के लिए तत्पर होकर हुंकार भरते हुए आकाश में जा पहुंचे। आकाश में एक और रुद्रावतार हनुमान थे तो दूसरी ओर रावण को महिमा प्रदान करने वाली श्यामा थी। यदि दोनों में युद्ध छिड़ गया तो प्रलय हो जाएगी। यह सोचकर शंकर जी ने देवी को समझाते हुए कहा कि तुम हनुमान को शक्ति से नहीं विवेक बुद्धि से झुका सकोगी और तभी प्रलय का यह संकट मिट सकेगा। व्याख्या, आकाश में एक और तो रात्रि के अंधकार जैसी काली व श्यामा अर्थात देवी थी जो रावण की रक्षा करते हुए उसे महिमावान बना रही थी, तो दूसरी ओर रुद्र अवतार हनुमान थे जो राम की पूजा के प्रताप से अपने तेज का प्रसार कर रहे थे। एक ओर शिव की वह शक्ति थी जो रावण के द्वारा पूजी गई थी और दूसरी ओर हनुमान की वह राम भक्ति थी जो निरंतर राम नाम के जप से शक्ति संपन्न बन गई थी। हनुमान आकाश को निगल जाने के दृढ़ निश्चय को लेकर आगे बढ़े। यह देखकर शांत रहने वाले शिव जी भी क्षण भर के लिए अस्थिर हो उठे, क्योंकि उन्हें यह प्रतीत हुआ कि यदि हनुमान ने आकाश निगल लिया तो प्रलय हो जाएगी। काली देवी के पैरों का भार धारण करने वाले शिव जी मेघ जैसे गंभीर स्वर में देवी को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे देवी, आप अपने तेज का संवरण करें। जिसे आप केवल वानर समझ रही हैं वह महान बलशाली हनुमान है जो चिर ब्रह्मचारी है और अभी तक श्रृंगार के जोड़े में आबद्ध नहीं हुए हैं। ये राम की अर्चना के साक्षात प्रतिरूप हैं, अमर एवं अक्षय शरीर वाले हैं। ये 11वें रुद्र के अवतार हैं तथा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनन्य भक्त एवं सेवक हैं। ये उनके लीलाओं में सहभागी बनकर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं, अतः तुम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। मैं तुम्हें सचेत करता हूँ कि यदि भूल से भी तुमने इन पर प्रहार करने की गलती की तो हे देवी, तुम्हें भयंकर पराजय का सामना करना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें विवेक बुद्धि का आश्रय लेकर इनके क्रोध युक्त मन को समझा बुझा कर शांत करना पड़ेगा, तभी सृष्टि पर आया हुआ यह प्रलय का यह संकट टल सकेगा। विशेष पॉइंट 1, हनुमान को 11वें रुद्र का अवतार माना गया है। पॉइंट 2, देवी और हनुमान का यह संघर्ष संभवतः बंगला की कृतिवासी रामायण से निराला जी ने लिया है। पॉइंट 3, श्यामा देवी का नाम काले रंग की इसमें श्लेष अलंकार है। पॉइंट 4, शिव अचल हुए क्षणभर चंचल में विरोधाभास अलंकार है। पॉइंट 5, नहीं वानर यह में आपोन्नति अलंकार है। पॉइंट सिक्स, हनुमान की क्षमता एवं सामर्थ्य का वर्णन है, जिसमें सूर्य को बचपन में निगल लिया हो वह आकाश को भी निगल सकता है। छंद बारह, कह हुए मौन शिव पवन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। बोली माता, तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध था तुम्हें, रहे बालक केवल, यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहे, यह लज्जा की बात की है बात की माँ रहती सहसह, यह महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल, पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने, तुम सेवक हो छोड़ कर धर्म कर रहे कार्य, क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य। कपी हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे धीरे गह प्रभु पद हुए दीन। प्रसंग, जब हनुमान को यह पता चला कि राम की आंखों में आंसुओं का कारण श्यामा अर्थात देवी है, तो वे श्यामा से संघर्ष करने तथा आकाश को निगल जाने के लिए क्रुत होकर आकाश में जा पहुंचे। उनके इस निश्चय को जानकर भगवान शिव व्याकुल हो उठे और उन्होंने देवी से अनुरोध किया कि आप हनुमान पर प्रहार न करें, अन्यथा आपको हार का सामना करना पड़ेगा। आप विद्या बुद्धि एवं विवेक का सहारा लेकर इन्हें समझाएं तो सृष्टि पर आया यह संकट टल सकेगा। देवी ने इसलिए माता अंजनी का रूप धारण कर हनुमान को आकाश न निगलने के लिए कहा और हनुमान विनम्र होकर पृथ्वी पर उतर आए। इन पंक्तियों में इसी वृतांत का वर्णन कवि ने किया है। व्याख्या, देवी को भगवान शिव ने यह बताया कि हनुमान को विद्या बुद्धि का सहारा लेकर समझाओ तथा भूल से भी इन पर प्रहार मत करना, अन्यथा तुम्हें हार का सामना करना पड़ेगा। इतना कहकर शिवजी तो शांत हो गए, किंतु अचानक ही अपनी माता अंजनी को आकाश में प्रकट देखकर हनुमान विस्मय से भर उठे। वास्तव में देवी ही अंजना का रूप धारण कर आकाश में प्रकट हो गई थी। माता अंजना हनुमान को समझाती हुई कहने लगी कि बचपन में एक बार जब तुमने सूर्य को निगल कर संसार को संकट में डाल दिया था, तब तुम्हारा अपराध यह समझकर सबने क्षमा कर दिया था कि तुम अबोध बालक हो और तुम्हें भले बुरे का ज्ञान नहीं, किंतु ऐसा लगता है कि तुम्हारा बचपना अभी तक गया नहीं है, इसलिए तुम आकाश को निगलने की सोच रहे हो। तुम्हारे लिए यह लज्जा की बात है कि तुम्हारी माता को अपने पुत्र के ऐसे कारनामों के कारण दूसरों की बात सहने पड़े। लोग यही तो कहेंगे कि अंजना ने कैसा पुत्र उत्पन्न किया है जो सृष्टि को बार बार संकट में डाल देता है। जरा विचार करो कि यह महाकाश है जहाँ भगवान शिव का निर्मल निवास है। शिव की पूजा तो तुम्हारे प्रभु श्री राम भी करते हैं, अतः उस आकाश को निगलने का निश्चय कर लेना क्या तुम्हारे लिए उचित होगा? क्या प्रभु श्री राम ने तुम्हें इस प्रकार की कोई आज्ञा दी है? हे पुत्र, तुम राम के सेवक हो, सेवक का कार्य होता है स्वामी की आज्ञा का पालन करना, किंतु इस समय तुम सेवक धर्म को त्याग कर अपनी इच्छा से आकाश को निगलने का जो कार्य करने जा रहे हो, वह निश्चय ही तुम्हारी स्वामी को भी स्वीकार नहीं होगा। अंजना के इस उपदेश को सुनकर हनुमान विनम्र हो गए। क्षण भर में ही माता अंजना की छवि अंतर्धान हो गई और हनुमान ने धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरकर प्रभु राम के चरणों को दीन भाव से पकड़ लिया। विशेष पॉइंट 1, हनुमान मातृभक्त है। माता अंजना के समझाने पर वे शांत हो गए। देवी ने ही शंकर जी के सुझाव पर अंजना का रूप धारण किया था। पॉइंट 3, हनुमान राम के सेवक हैं। यह बात अंजना ने यहाँ कहकर इन्हें सेवक धर्म का निर्वाह करने को कहा है। पॉइंट 4, वक्रोक्ति अलंकार है। पॉइंट 5, भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। छंद 13, राम का विष्णानंद देखते हुए कुछ क्षण, हे सखा विभूषण बोले, आज प्रसन्न वदन वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर वानर भल्लुक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर रघुवीर तीर सब वही तूर्ण में है रक्षित है वही वक्षरण कुशल हस्त बल वही अमित है वही सुमित्रानंदन मेघानंद जित रण है वही भलपति वानरेंद्र सुग्रीव पामन। तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर अप्रतिभट वही एक अर्बुद सम महावीर है वही दक्ष सेना नायक है वही समर फिर कैसे असमय हुआ उदय यह भाव प्रहर रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा हो जब जय रण कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय रावण रावण लंपट खल कलमश गताचार जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर कहता रण की जय कथा परिषद दल से घिर सुनता वसंत में उपवन में कल कूजित पिक मैं बना किंतु लंका पति धिकरावक धिक राघव धिक धिक। प्रसंग रावण को पराजित न कर पाने के कारण राम निराश थे देवी रावण की सहायता कर रही थी अतः राम के प्रहार रावण पर प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे उनकी निराशा का मूल कारण यही था। राम के विषाद को देखकर विभीषण उन्हें समझाते हुए कहने लगे कि आपको इस प्रकार निराशय नहीं होना चाहिए आपकी उदासी का कारण मेरी समझ से बाहर है आपके सहायक वही हैं जो आपके अस्त्र शस्त्र भी सुरक्षित हैं और वही रोज वाला युद्ध आपको लड़ना है फिर यह निराशा क्यों। व्याख्या राम के विषादपूर्ण मुखमंडल को कुछ क्षणों तक देखने के उपरांत विभीषण उन्हें संबोधित करते हुए बोले हे मित्र आज आपके मुख पर वह नित्य व्याप्त प्रसन्नता नहीं है जिसे देखकर वानर भालू थकान रहित हो जाते थे और नव जीवन पा लेते थे। हे राम मुझे तो कहीं कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा आपके तरकश में वही तीर सुरक्षित हैं जिनसे आपने अनेक राक्षसों का वध अभी तक किया है वही चौड़ी छाती तथा युद्ध में निपुण हाथों के साथ वही अपार बल मुझे आप में दिखाई देता है आपके वीर सहायक भी सुरक्षित हैं सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण जिन्होंने मेघनाथ को युद्ध में परास्त किया है भालुओं के राजा जामवंत वानर श्रेष्ठ सुग्रीव तारा का पुत्र अंगद महान बलशाली एवं धैर्यवान श्वेत और सबसे महान वीर हनुमान जो अकेले ही एक सेना के समान हैं तथा जिनमें अरबों योद्धाओं का बल है वह भी आपको सहायता के रूप में प्राप्त है ऐसे महान योद्धाओं का साथ पाकर भी आप निराश हैं युद्ध से डर रहे हैं यह देखकर मुझे महान आश्चर्य हो रहा है निराशा एवं विषाद के लिए यह अवसर उचित नहीं है हे मित्र आपको इन भावनाओं से मुक्ति पानी होगी और युद्ध में संलग्न होना पड़ेगा हे राम आपका आचरण एवं शौर्य महान रहा है किंतु आप इस समय जिस निराशा का परिचय दे रहे हैं वह आपके महान रघुवंश के गौरव के अनुकूल नहीं है। यह तो सोचें कि यह युद्ध जब अपनी समाप्ति पर है तथा आपने इसे लगभग जीत ही लिया है तब अंतिम क्षणों में आप युद्ध से विमुक्त हो रहे हैं क्या यह आचरण प्रशंसनीय कहा जाएगा? इस युद्ध में विजय के लिए आपने और हमने सब कितना श्रम किया है, और जब इसका सुखद परिणाम हमें प्राप्त होने वाला है, सीता की मुक्ति होने वाली है, तब आप युद्ध से विमुक्त होकर वास्तव में अपनी निर्दयता का परिचय देते हुए सीता से दूर भाग रहे हैं। वह सीता कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, और तुम युद्ध नहीं करोगे तो रावण को कैसे पराजित होगा और सीता की मुक्ति कैसे होगी? रावण अन्यायी, अधर्मी, पापी, आचरण विहीन है। उसने मुझे लात मारकर तब भगा दिया था जब मैं उसके हित की बात कह रहा था। ऐसे अन्यायी रावण की विजय हो जाएगी यदि आप युद्ध से पलायन करेंगे। मैं अपनी कल्पना में देख रहा हूँ कि रावण अशोक वाटिका में बैठी सीता को दुख दे रहा है तथा अपनी विजय गाथा डिंग मारकर अपने पार्षदों को कोयल कुजित उपवन में सुना रहा है। क्या तुम ऐसा होने दोगे? तुमने अन्याय एवं अधर्म को नष्ट करने का बीड़ा उठाया है, तुम्हारी उस प्रतिज्ञा का क्या होगा? जरा यह तो सोचो कि तुमने मुझे लंकापति बनाने का वचन दिया है, यह वचन कैसे पूरा होगा यदि आप निराशा के कारण युद्ध से विमुख हो जाएंगे? किसी और कारण से ना सही, कम से कम अपने इस वचन का पालन करने के लिए ही आपको युद्ध में संलग्न रहना चाहिए। विशेष पॉइंट 1, प्रस्तुत अवतरण से विभीषण के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। वह राम का सच्चा मित्र है तथा एक मित्र की भांति ही निराशा के क्षणों में उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है। पॉइंट 2, विभीषण स्वार्थी नहीं है। वह लंकापति बनने के लिए नहीं अपितु राम को युद्ध संलग्न करने के लिए कड़वी बातें कह रहा है। एक मित्र होने के कारण उसे यह अधिकार प्राप्त है। पॉइंट 3, पीठ फेरना, हाथ खींचना मुहावरे हैं, अर्थ हैं विमुख होना। पॉइंट 4, रघुकुल गौरव में परिकरामकुर अलंकार है। पॉइंट 5, छायावादी भाषा शैली लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली है। कथन में व्यंग का पुट है। छंद 14, सब सभा रहे निस्तब्ध, राम के स्तमित नयन छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन, जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे न इन्हें कुछ चाव न हो कोई दुराव, जो हो वे शब्द मात्र मैत्री के समनुरुक्ति, पर जहाँ गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति, कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर बोले रघुमणि, मित्रवर विजय होगी न समर, यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उत्तरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलकते दृग्जल, रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेजह प्रचंड, धस गया धरा में कपि गह युग पद मसक दंड, स्थिर जाम्बवान समझाते हुए ज्यों सकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुए उर में ज्यों विषम घाव, निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यूं स्पंदित वातावरण विषम। प्रसंग, विभीषण ने राम की निराशा को दूर करने के लिए जो प्रोत्साहन भरे हुए शब्द कहे, राम पर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा लगा जैसे उन ओजस्वी शब्दों में अर्थ व्यक्त करने की शक्ति ही न थी। कुछ क्षणों के उपरांत राम ने सारी सभा को संबोधित करते हुए वस्तु स्थिति से अवगत कराया कि इस युद्ध में देवी रावण की सहायता कर रही हैं, इसलिए अब हमें विजय प्राप्त नहीं होगी। मुझे दुख है तो केवल इस बात का कि अब देवी शक्तियां भी अन्याय एवं अधर्म का साथ दे रही हैं। ऐसा कहते ही उनकी आंखों में आंसू भर आए तथा जामवंत, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, लक्ष्मण इस बात को जानकर भीतर ही भीतर कसमसाने लगे। कवि ने इसी वृतांत का वर्णन इन पंक्तियों में किया है। व्याख्या। विभीषण के इन वचनों को सुनकर सारी सभा शांत रही। राम के अधखुले नेत्र उदास भाव से शीतल प्रकाश छोड़ते रहे, अर्थात विभीषण के ओजस्वी भाषण को सुनकर भी उनमें चमक उत्पन्न नहीं हुई। लगता था कि उन ओजस्वी शब्दों का कोई प्रभाव ही राम पर नहीं पड़ा हो। इन शब्दों से उन्हें जैसे कुछ लेना देना ही न हो। लगता था कि वे शब्द मात्र हैं और मैत्री की भावना से कर्तव्य का पालन करते हुए सुने गए हैं, किंतु उनमें गहन भाव से प्रभावित करने की न तो क्षमता थी और न राम ने उन्हें ग्रहण की ही किया। अर्थात विभीषण के इन शब्दों से राम पूर्णतः अप्रभावित रहे। कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद राम अपने सहज शांत स्वर में इस प्रकार कहने लगे, हे मित्र, इस युद्ध में अब हमारी विजय नहीं हो सकती, क्योंकि अब युद्ध नर वानरों का राक्षस से युद्ध नहीं रहा, अपितु रावण का आमंत्रण पाकर महाशक्ति अर्थात श्यामा उसकी रक्षा सहायता करने के लिए आ गई हैं। देवी रावण की सहायता युद्ध में कर रही हैं, अतः यह युद्ध हम नहीं जीत पाएंगे। मुझे दुख है तो केवल इस बात का कि देव शक्तियां भी अब अन्याय एवं अधर्म का पक्ष का साथ दे रही हैं। यह कहते कहते राम की आंखों में आंसू छलछला आए तथा कुछ बूंदे आंसुओं की पृथ्वी पर टपक पड़ी। राम की आंखों में आंसू आने से कंठ अवरुद्ध हो गया, फिर वे कुछ बोले नहीं सके। लक्ष्मण प्रचंड तेज से युक्त होकर कसमसाने लगे। हनुमान राम के चरण कमलों को पकड़कर लज्जा से जमीन में धंसे जा रहे थे। जांबवंत स्थिर थे तथा इस विपत्ति से निकलने का रास्ता खोज रहे थे। सुग्रीव व्याकुल थे। सुग्रीव व्याकुल थे जैसे हृदय में कोई भयंकर घाव हो गया हो। विभीषण आगे का कार्यक्रम सुनिश्चित कर रहे थे। इस प्रकार भले ही कोई कुछ बोल नहीं रहा था, किंतु वातावरण में एक हलचल व्याप्त थी। विशेष पॉइंट वन। राम ने जब यह सूचना दी कि देवी इस युद्ध में रावण की सहायता कर रही है, तब सबको वस्तु स्थिति का बोध हुआ कि राम निराश क्यों है। पॉइंट टू। छलछल में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। पॉइंट थ्री। जो विषम घाव में उत्प्रेक्षा अलंकार है। पॉइंट फोर। मौन में रहा विषम अलंकार है। पॉइंट फाइव। छायावादी भाव शिल्प है। पॉइंट सिक्स। विभिन्न पात्रों के मानसिक अंतर्द्वंद्व का चित्रण है। पॉइंट सेवन। निराला के राम ईश्वर न होकर एक सामान्य मानव हैं, जो सुख दुख से प्रभावित होते हैं। छंद पंद्रह। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण बोले, डैश आया न समझ में यह देवी विधान, रावण अर्ध मरत भी अपना में हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर, शंकर शंकर करता है योजित बार बार शर निकर, निश्चित हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित, जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, शत शुद्धि बोध सूक्ष्मति सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें है शास्त्र शास्त्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक, जो हुए प्रजापतियों के संयम से रक्षित, वे शर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित। प्रसंग। राम ने विभीषण एवं अन्य वानर वीरों को संबोधित करते हुए कहा है कि हे वीर, इस युद्ध में हमारी विजय नहीं हो सकती, क्योंकि रावण की सहायता देवी कर रही हैं और इसी कारण मेरे वे बाण श्रीहत एवं खंडित हो रहे हैं जो देवी शक्ति से संपन्न है एवं विश्व को जीत सकने की क्षमता रखते हैं। बाणों की जो अमोद शक्ति मुझे परमात्मा ने प्रदान की है, उसका मैंने कभी दुरुपयोग नहीं किया। सदैव सृष्टि की रक्षा के लिए, अन्याय एवं अत्याचार का विनाश करने के लिए ही मैंने इनका संधान किया। फिर मेरे बाणों की वह शक्ति आज श्रीहत क्यों हो गई, इसका मुझे आश्चर्य भी है और दुख भी। व्याख्या। राम अपनी बात कहकर कुछ क्षणों तक निराश एवं दुख के भाव में डूबे रहे। तत्पश्चात उन्होंने अपने को संभाला और फिर जानकी बल्लभ राम सहज संयत स्वर में इस प्रकार कहने लगे कि मुझे यह देवी विधान बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि देव शक्तियों के लिए अर्धमरत रावण तो अपना हो गया और मैं धर्मानुसार आचरण करने पर भी पराया हो गया। देव शक्तियां तो सदा धर्म के साथ रहती हैं, फिर आज देवी ने अधर्मी रावण का साथ देकर उसकी रक्षा क्यों की? राक्षस रावण से तो युद्ध किया जा सकता है, पर देवी से नहीं। यह युद्ध तो अब शक्ति के लिए क्रीड़ा मात्र रह गया है। अतः हे शंकर जी, अब आप ही रक्षा करें। मैं आज बार बार रावण पर अपने पैने बाणों का संधान करता था। वे बाण असाधारण शक्ति से संपन्न थे, जिनसे इसे संपूर्ण सृष्टि को जीता जा सकता था। वे तेज पुंज बाण सृष्टि की रक्षा के विचार से ही चलाए जाते थे, तथा जिनसे संस्कृति का पतन करने वाले तत्वों का विनाश किया जाता रहा है। बाणों का संधान करने से पूर्व सदैव यह विचार किया जाता है कि जिन पर बाणों का प्रहार किया जा रहा है, वह दंडनीय है भी या नहीं। भाव यह है कि बाणों का मैंने कभी दुरुपयोग नहीं किया। शक्ति का जब दुरुपयोग किया जाता है, तभी वह निष्प्रभावी होती है। किंतु मैंने और मेरे पूर्वजों ने कभी देवी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। रघुवंश के राजाओं ने बड़े संयम के साथ इन अमोघ बाणों की रक्षा की। क्षत्रिय धर्म इनमें पूर्णतः अभिषिक्त रहा है, अर्थात शरणागत की रक्षा के लिए, आतताई को दंडित करने के लिए एवं अन्याय का प्रतिकार करने के लिए हम क्षत्रियों ने इन बाणों का संधान किया है और अभी और कभी इनका दुरुपयोग भी नहीं किया। किंतु आज रावण के साथ हुए युद्ध में मेरे वही अमोध बाण श्रीहत खंडित एवं निष्प्रभ हो गए, इस बात का मुझे आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है। विशेष एक राम यह पॉइंट वन। राम यह कहना चाहते हैं कि मेरे बाण अमोध थे, किंतु आज ये निष्प्रभ क्यों हो गए। पॉइंट टू, परमात्मा द्वारा दी गई शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह शक्ति निष्प्रभ हो जाती है। पॉइंट थ्री, देव शक्तियों को अधर्मी रावण का साथ नहीं देना चाहिए, यही राम कहना चाहते हैं। पॉइंट फोर, क्षत्रिय का धर्म है शरणागत की रक्षा, अन्याय एवं अत्याचार का विरोध। पॉइंट फाइव, भावानुकूल संस्कृत निष्ठ पदावली का प्रयोग है। छंद 16। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक, नभ में अशंक हत मंत्र पूत शर संवृत करती बार बार, निष्फल होते लक्ष्य पर शिप्रवार पर वार, विचलित लख कपि दल क्रुद्ध युद्ध को मैं ज्यों ज्यों, झक झक झलकती वहनी वामा के दृग त्यों त्यों, पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हाथ, फिर खींचा न धनु मुक्त ज्यों बंधा मैं हुआ त्रस्त। प्रसंग। श्री राम ने अपने साथियों को बताया कि आज हुए युद्ध में देवी रावण की सहायता कर रही थी। वे मेरे द्वारा चलाए गए बाणों को रोक लेती थीं। जब उन्होंने मेरी ओर देखा तो मुझसे धनुष की डोरी खींची नहीं गई और मैं मुक्त होते हुए भी स्वयं को बंधा हुआ सा अनुभव करने लगा। व्याख्या। राम कहने लगे कि मैंने युद्ध क्षेत्र में देखा है कि वह महाशक्ति रावण को अपने गोद में उसी तरह बिठाए हुए है जैसे आकाश लांछित चंद्रमा को निशंक होकर अपने आश्रय में रखता है। मेरे द्वारा चलाए गए अभिमंत्रित बाणों को वे बार बार रोक लेती थी और इसलिए लक्ष्य रावण पर चलाए गए मेरे बाण बार बार निष्फल हो रहे थे। वानर सेना को रावण के प्रहारों से विचलित देखकर मैं क्रोधित होकर जैसे जैसे युद्ध में संलग्न होता था कि मुझे उस वामा अर्थात देवी के नेत्रों में आग की ज्वाला धधकती हुई देखने लगी कि मेरे हाथ बंधे से गए और मैं पूर्णतः मुक्त होने पर भी बंध गया तथा मुझसे धनुष की प्रत्यंचा खींची ना जा सकी। विशेष पॉइंट वन, लांछन को ... अशंक में दृष्टांत अलंकार है, क्रुद्ध युद्ध में पद मैत्री अलंकार है। पॉइंट थ्री, झक झक झलकती में दृश्य बिंब की योजना है। पॉइंट फोर, वामा में परिक्रांकुर अलंकार है। पॉइंट फाइव, पश्चात ... हस्त में विभावना अलंकार है। पॉइंट सिक्स, मुक्त ज्यों बंधा में विरोधाभास अलंकार है। छंद 17, कह हुए भानु कुलभूषण वहां मौन शनभर बोले विश्वस्त कंठ से जांबवान रघुबीर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण हे पुरुष सिंह तुम भी वह शक्ति करो धारण आराधना का दृढ़ आराधन से दो उत्तर तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त शक्ति भी की करो मौलिक कल्पना करो पूजन छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। प्रसंग, राम ने जब अपने साथियों को यह बताया कि देवी रावण की सहायता कर रही हैं और इसलिए उनके बाण रावण पर प्रहार नहीं कर पा रहे हैं तो जामवंत ने रावण को यह सुझाव दिया कि तुम भी शक्ति का की आराधना कर उसे प्रसन्न करो। रावण अशुद्ध होकर यदि शक्ति को अपने वशीभूत कर तुम्हें त्रस्त कर रहा है तो तुम शक्ति पूजा के द्वारा शक्ति को प्रसन्न कर उसे नष्ट कर दोगे। इन पंक्तियों में कवि ने जामवंत के इसी सुझाव का वर्णन किया है। व्याख्या, राम यह कहकर मौन हो गए कि देवी रावण की सहायता कर रही हैं अतः अब हमारी विजय नहीं हो सकती। सूर्य वंश के विभूषण राम के मौन हो जाने के बाद विश्वास भरे स्वर में जामवंत इस प्रकार कहने लगे, हे राम मुझे तो विचलित होने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। हे वीर पुरुष आप भी उस शक्ति को धारण कीजिए अर्थात शक्ति की आराधना करके देवी को प्रसन्न करो और पूजा का उत्तर पूजा से दो। मुझे पूरा विश्वास है कि रावण के प्राणों पर देवी की उपासना करके तुम विजय प्राप्त करोगे। यदि रावण अशुद्ध होकर भी शक्ति की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकता है और तुम्हें भयभीत कर पाया है तो तुम निश्चय ही सिद्ध पुरुष बनकर रावण को नष्ट कर सकोगे। हे राम आप शक्ति की मौलिक कल्पना करके देवी की पूजा करें और जब तक आपको सिद्धि प्राप्त ना हो तब तक के लिए युद्ध से विरत हो जाएं। विशेष पॉइंट वन, जामवंत मंत्री है अतः मंत्री के उपयुक्त विवेक एवं धैर्य उनमें विद्यमान है। पॉइंट टू, वे किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते तथा कोई ना कोई उपाय निकाल लेते हैं। पॉइंट थ्री, जामवंत ने राम को शक्ति की मौलिक कल्पना करने के लिए कहा है। निराला की अवधारणा है कि किसी का अनुकरण करके सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप शक्ति की मौलिक कल्पना व्यक्ति को करनी चाहिए तभी वह सिद्धि प्राप्त कर सकता है। पॉइंट फोर, जैसे सिंह देवी को अपने ऊपर धारण करता है वैसे ही तुम राम पुरुष सिंह बनकर शक्ति को धारण करो, यही जामवंत का सुझाव है। पॉइंट 5, प्रस्तुत पंक्तियों से जामवंत के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। पॉइंट 6, पुरुष सिंह में रूपक अलंकार है। छंद 18, तब तक लक्ष्मण हैं महावाहिनी के नायक, मध्य भाग में अंगद दक्षिण श्वेत सहायक, में भल्ल सैन्य है वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान, सुग्रीव विभीषण एवं युद्धपति यथा समय आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय। प्रसंग, जामवंत ने राम को सुझाव दिया कि आप शक्ति की उपासना कर राम वर्ण को पूजा का उत्तर पूजा से दें, तब तक आप युद्ध से विरत रहें जब तक आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होती, तब तक के लिए युद्ध का नेतृत्व लक्ष्मण करेंगे और हमारी रणनीति क्या होगी इसका विवरण भी विस्तार से उन्होंने प्रस्तुत किया। व्याख्या, हे राम, जब तक आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होती तब तक आप युद्ध से विरत रहें, तब तक हमारी सेना लक्ष्मण के नेतृत्व में रावण से युद्ध करेगी, सेना के मध्य भाग में अंगद रहेंगे तथा दाहिनी पार्श्व को श्वेत एवं उनके सहायक संभालेंगे, यही नहीं अपितु नल नील एवं अन्य छोटे कपिगण तो यथास्थान युद्ध करेंगे ही, महावीर हनुमान सेनापति के वाम पार्श्व में रहेंगे, सुग्रीव और विभीषण तथा अन्य टुकड़ियों के नायक क्या समय उस समय वहां पहुंच जाएंगे जब हमारी सेना कहीं कमजोर पड़ती दिखाई पड़ेगी, आरक्षित सेना के ये योद्धा तभी वहां पहुंचकर सहायता प्रदान करेंगे। विशेष, पॉइंट 1, जामवंत एक कुशल सेना नायक की भांति सेना की व्यूह रचना का खाका प्रस्तुत कर रहे हैं। पॉइंट 2, जामवंत में त्वरित बुद्धि एवं निर्णय लेने की क्षमता विद्यमान है जिसका परिचय इन पंक्तियों से मिलता है। पॉइंट 3, व्यूह रचना के द्वारा युद्ध के वातावरण की सृष्टि की गई है। छंद 19वां, खिल गई सभा उत्तम निश्चय यह भल्ल नाथ, कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका माथ, हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार, कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन खुल गए रहा निष्पलक भाव में मंजित मन, बोले आवेग रहित स्वर में विश्वास स्थित, मातः दश भुजा विश्व ज्योति मैं हूँ, आश्रित हो विद्ध शक्ति से हे महिषासुर, खल मर्दित जन रंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित, यह मेरा प्रतीक मातः समझा इंगित, मैं सिंह इसी भाव में करूँगा अभिनंदित, कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न, हे देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन, बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद, बोले भावस्थ चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंद्र। प्रसंग, जामवंत के द्वारा दिया गया यह सुझाव सारी सभा को पसंद आया कि राम को युद्ध से विरत होकर शक्ति की पूजा करनी चाहिए। राम ने भी आदर के साथ सिर झुकाकर उन्हें सम्मान दिया। राम ने शक्ति की मौलिक कल्पना करते हुए उनका ध्यान करना प्रारंभ कर दिया और प्रार्थना की कि आप मुझे अपनी शरण में ले लें। इन पंक्तियों में कवि ने इसी वृत्तांत का वर्णन किया है। व्याख्या, जामवंत के इस सुझाव को सुनकर सारी सभा प्रसन्न हो गई और राम ने यह कहते हुए कि भालुओं के स्वामी जामवंत आपका यह सुझाव अति उत्तम है, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए अपना सिर झुकाया। तत्पश्चात राम ध्यानलीन होकर पुनः विचार करने लगे। सभी लोग बार बार देख रहे थे कि उनका शरीर देवी के ध्यान में पुलकायमान हो रहा था। कुछ क्षण के बाद राम ने अपने वे नेत्र खोले जो अपनी शोभा से नील कमल की सुंदरता को भी लज्जित कर रहे थे। उनके नेत्र तो खुल गए थे किंतु मन अभी तक भावों में डूबा हुआ था। वे आवेग रहित शांत स्वर में विश्वास भरे कंठ से देवी को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे माता, आप दश भुजाओं वाली हैं, संपूर्ण संसार को प्रकाशित करती हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपकी शक्ति से महिषासुर जैसे असुर का विनाश हुआ है। भक्तों को प्रसन्न करने वाले आपके चरण कमलों के नीचे गर्जना करता हुआ यह सिंह धन्य है। हे माता, यह सिंह मेरा ही प्रतीक है। मैं आपके संकेत को समझकर एक भक्त की भांति आपके चरणों में रहकर वीर भाव से अपनी आराधना करूंगा। मैं सिंह भावना से ही आपका अभिनंदन कर सिद्धि प्राप्त करूंगा। कुछ समय तक राम निश्चेत रहे और देवी की शोभा में ध्यान में डूबे रहे। तत्पश्चात उन्होंने कमल की पंखुड़ियों जैसे ज्योतिर्मय पलकों को उठाकर अपने ध्यानस्थ नेत्र खोले। मंत्री, सेनापति आदि सभी लोग राम को वीरासन में बैठा हुआ देख रहे थे। उनके मुख पर आशा की मुस्कान दिखाई दे रही थी, क्योंकि गतिरोध दूर हो गया था और रावण पर विजय पाने का एक मार्ग उन्हें मिल गया था। भाव में डूबे हुए श्री राम, जो अपने मुख की शोभा से चंद्रमा को भी लज्जित कर रहे थे, अपने प्राणों में पवित्र भाव भर कर इस प्रकार कहने लगे। विशेष पॉइंट वन, जामवंत के सुझाव ने राम को ही नहीं अपितु अन्य सभी उपस्थित लोगों को भी प्रसन्न कर दिया, क्योंकि अब सबको एक मार्ग मिल गया था जिससे रावण पर विजय प्राप्त की जा सकती थी। पॉइंट टू, इंदिव निंदित लोचन चंद्रमुख निंदित रामचंद्र में प्रतीप अलंकार है। पॉइंट थ्री, भावानुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है। पॉइंट फोर, सिंह देवी के चरणों में है, वीर है तथा दुष्टों का नाश करता है, इसलिए राम सिंह भाव से देवी की पूजा कर रहे हैं।